अष्टपाहुर लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धे सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अज्जायानं नमो लोये सवसाहुनं कावुननमुकारं जिनवरवरसस्सपड्डमानस दन्तणमग्गं वोच्छामि जहा कम्मं समासेन। यह कुंद आचार्य भगवान लिखित जो अष्टपाहुड़ है उसमें हम दर्शन पाहुड़ को देखते हुए गुरुदेव ने जो प्रवचन किए हैं उस अष्टपाहुड़ प्रवचन नामक शास्त्र के पेज नंबर 44 पर हम आए हैं। यहाँ जो आखिरी लास्ट पैराग्राफ है उसकी बात हम देख रहे हैं। आत्मा में सम्यक दर्शन होने पर ही धर्म की शुरुआत होती है। क्या कहा? याने एक बात निश्चित हो गई कि जब तक किसी जीव के सम्यक दर्शन नहीं होता है तो वहां धर्म की शुरुआत ही नहीं है। देखो कैसी बढ़िया बात है, ये निश्चित रूप से नक्की हो गया कि अन्य मति वाले कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं है पर वो धर्म नहीं कर रहे, और वे सारे ऐसा मानते कि हम बहुत धार्मिक हैं, धर्म हमारा शुरू है। यहां क्या कह रहे हैं? आत्मा में सम्यक दर्शन होने पर ही धर्म की शुरुआत होती है। यानी हम जैनी हैं और अगर हमने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया है तो यहां पर भी धर्म की शुरुआत नहीं है। देखो भाई, ये बात तो बहुत कड़वी लगे ऐसी है पर सत्य है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध चिदानंद है। देखो अभी हम जो पढ़ रहे हैं और पहले जो हमने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में देखा, क्या फर्क है? ये बार बार हमको रटा रहे हैं कि तू शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। अब यहां तो कहते शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप है। ये आनंद भी तेरा ही स्वभाव है, ये सुख भी तू सुख स्वरूप ही है, तो कहीं अन्य से बाहर से सुख आए ऐसी बात ही नहीं। आनंद है वो जो आनंद यहाँ अंदर लबालब भरा हुआ है स्वभाव में, उसी से वो प्रकट होने वाला है। देखो भाई, ये सब समझते हुए हमें अपने को टटोलना है कि क्या मेरे में धर्म की शुरुआत हुई है क्या नहीं, तो वो करने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए कि नहीं, ये बात मैं बताना चाहूँ। यहाँ अरे क्या तू अभी तक बिता देती है, इतना साल क्या किया, जो किया सो किया। अभी हम स्वयं की तरफ देख और अपन कहाँ खड़े हैं, कौन सी मान्यता लिए हैं हम, इसका विचार वारंवार होना चाहिए। और जब हम निर्णय करते हैं कि स्वभाव से तो मैं शुद्ध ही हूँ, उसमें रंच मात्र भी शंका नहीं है, लेकिन पर्याय में मेरी अशुद्धता है और वह अशुद्धता कैसे टलेगी, तो कहते हैं अपने स्वभाव में लीनता करेगा, उसका अनुभव करेगा, तो ही ये बात आगे बढ़ने वाली है। तो कह रहे आत्मा का स्वभाव शुद्ध चिदानंद है, उसकी वर्तमान दशा स्वभाव सन्मुख होकर उसे पकड़ने के बदले रागादि में ही एकत्व बुद्धि करती है, जो मिथ्यात्व है। दशा करेगी ना, दशा कर, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो दशा की बात कर रहे,
वर्तमान दशा करती है।
इसका कर्ता कौन है, आत्मा है क्या दशा है? तो दशा करता होगा क्या, करती होगी, ख्याल में है ना?
वर्तमान दशा रागादि में एकत्व बुद्धि करती है।
बहुत अच्छा, आप इस बहाने कम से कम बराबर ध्यान देके तो पढ़ते हो, कोई बात नहीं। गुरुजी कहते हैं व्याकरण नो थोड़ो बड़ो अभ्यास जोई नयनो व्याकरण आदिनो, तो ये इसके लिए। अब आगे आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव की प्रतीति करने से सम्यक दर्शन होता है, तभी आत्मा में धर्म की शुरुआत होती है। आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ, उसमें मूल कारण तो आत्मा के स्वभाव का आश्रय किया वही है, और उस समय अन्य दूसरे बाह्य कारण निमित्त रूप कैसे कैसे होते हैं उसका यहाँ वर्णन चल रहा है। वो हमने चार प्रकार देखे थे ना, हाँ याद है किसको, प्रतिपति याद है आपको? हाँ, वस्तु स्वभाव, वस्तु दशलक्षण धर्म, हाँ, और जीव दया धर्म, और क्या रह गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह धर्म। कोई बात नहीं, ये हमने व्यवहार की बात की, यानी वो उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो कह रहे हैं जिस समय आत्म स्वभाव का आश्रय करेगा वही धर्म है, और उस समय अन्य दूसरे बाह्य कारण क्या क्या होते हैं उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो अभी क्या है, एक आध दिन का, दो दिन का गैप पड़ जाता है, तो हम कौन सा विषय पढ़ रहे थे ये नहीं भूलना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, भगवान के पंच कल्याणकों इत्यादि की महिमा का देखना तथा जाति स्मरण ज्ञान आदि बाह्य कारणों का वर्णन हो चुका। वेदना का वर्णन यहाँ चल रहा है, वेदना अर्थात बाहर में तीव्र प्रतिकूलता का संयोग हो और आकुलता का वेदन हो, उस दुख में किसी जीव को ऐसा विचार आता है कि अरे क्या ऐसे दुख का वेदना यही जीव का स्वभाव होगा। देखो मुझे एक बात ऐसी याद आ गई, जो जीव मिथ्या दृष्टि जीव मान लो यहाँ से स्वर्ग में जाता है, तो मिथ्या दृष्टि जीव स्वर्ग में जाता है तो वहाँ उसको अनुकूल सामग्री बहुत मिलती है, और वो भोगने में इतना इतना मस्त हो जाता है, व्यग्रता करता है, तो उसकी कौन सी गति प्राप्त हो सकती है वहां से मिथ्यात्म में गिर के नीचे आवे, नीचे यानी वो ऊपर है ना स्वर्ग, तो कौन सी गति प्राप्त कर सकता है? एक केंद्रीय, बराबर, आपने सही कहा। अब मैं आपसे पूछता हूँ,
गति पूछे ना,
कोई बात नहीं, तिरंज गति वो एक केंद्रीय है। हाँ, मैंने गति के बदले उन्होंने इंद्रिय कहा, फिर भी ठीक है, एक केंद्रीय यानी वो तिरंज गति में आता है। अब मुझे ऐसा पूछना है, जो नरक में से नीचे ऊपर आए तो वो कौन से अब पर्याय में आएगा, अब गति में आएगा, जो गति ले लो तो अच्छा है, मनुष्य या तीरंज, तो तीरंज में कौन सा इंद्रिय वाला जीव होगा, वो पंचेंद्रिय क्या, चतुर इंद्रिय, तीन इंद्रिय, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय नहीं होगा, दो इंद्रिय नहीं होगा, तीन इंद्रिय नहीं होगा, चार इंद्रिय नहीं होगा, असंगी भी नहीं होगा, संगी होगा। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ, देवगति का जीव नीचे आवे तो एक केंद्रीय में जाएगा, क्यों, वो इतने पर पदार्थों में अनुकूल संयोगों में इतना रचा पचा रहता है, तो उसने आत्मा को दुर्लक्षित किया। और यहाँ जो नरक में जो जाता है, इतनी वेदना होती है उसको, तो उसको उसके प्रति थोड़ा सा ऐसा होता है, अरे क्या किया मैंने, इसमें से मैं कैसा छूटूं। और उसके परिणाम वहां से छूटने के लिए लालयित हुए, और इसके वहीं रहने के लिए लालयित हुए, तो उसको खोटे में खोटी गति मिली, गति को पर्याय मिले। और ये जीव यहाँ पंचेंद्रिय हुआ, ये वही बात कर रहे, देखो सेकंड लाइन, अरे क्या ऐसे दुख का वेदना यही जीव का स्वभाव होगा। ऐसा विचारते हुए वह अंतर में स्वभाव को पकड़कर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो उसके वेदना निमित्त कही जाती है, यानी उसको भी वो वेदना भी बहुत लाभदायक हो जाते हैं। नरक में तो महा तीव्र वेदना होती है, किंतु दुख वहां भी किसी संयोग के कारण नहीं है। तीव्र वेदना में किसी को ऐसा विचार आता है कि अरे क्या ऐसी वेदना भोगना यही मेरा अस्तित्व है, नहीं नहीं, तथा यह वेदना किसी ईश्वर प्रदत्त भी नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर वेदना का दाता हो तो अन्य को न देकर मुझे क्यों दी, अतः मेरे परिणाम का ही यह फल है, किंतु ऐसी वेदना ही भोगना मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो वेदना रहित है। इस प्रकार अंतर में स्वभाव का लक्ष्य होने पर सम्यक दर्शन हो जाता है, वहां वेदना को सम्यक्त्व का निमित्त कहा जाता है। देखो मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, जरा ध्यान देना, फिर बोलना मत मैंने सुना नहीं। लास्ट सेंटेंस क्या पढ़ा था हमने, वहां वेदना को सम्यक्त्व का निमित्त कहा जाता है, तो ये कौन सा निमित्त है बापा? कौन सा निमित्त है? कल देखे ना हमने दो भाग निमित्तों के, दिव्याबेन, अच्छा आप क्या कहते हैं भाई? अच्छा देखो हमारी क्या नाम है लक्ष्मी बहन ने तो ऐसा मुंह किया क्या कि कड़ी में मक्खी गिर जाए वैसा। बोलो बोलो सही उत्तर बोलो। हाँ उसको बहिरंग निमित्त कहेंगे, बहिरंग निमित्त। और अंतरंग निमित्त किसको कहना भाई? हाँ अच्छा आप, मैंने कहा आप बोले। हाँ जो कहते हैं निमित्त कौन सा, जो नियम रूप से होता है। अभी इधर तो वेदना की बात हो रही ना, किसी को तो समोचरण देखकर, किसी को तो जिनेंद्र भगवान का प्रतिबिंब देखकर, किसी को तो अन्य अनेक मतलब गुरु का उपदेश, ये क्या है सब बाह्य यानी बहिरंग निमित्त है। और जो अंतरंग निमित्त वो कौन सा होगा कि जब जब किसी जीव के सम्यक दर्शन रूप परिणति होती है तो उसके क्या कहा, अरे भैया कर्मों का अनुदय, हाँ भूल गए, एक नीचे से कुर्सी पे आ गए ना, इसलिए ऐसा होता है। अरे कल कितनी बार ये घुटा था भाई, मुझे आज लगा ये मूर्खता है, फिर पूछूं मैं, मुझे ऐसे ही लगा एक क्षण भर भी। और मैं तो हमारे सौभाग्यमल को ही टारगेट बनाना चाहता था, ये तो हमको तीन मिले सौभाग्यमल, एक आप और एक आप। कल ही बात हुई थी ना भाई, तुम नहीं थे क्या? कोई बात नहीं, ये मेरी आदत ही है, एक ही बात को मैं दो दो बार बोलता हूँ, लोगों को कंटाला आता है, पर करूँ क्या, ये तो घूंटन वारों वार उसका चिंतन, क्योंकि ये बातें भाई अभी मैं कहूंगा। अभी देवलाली में जब शिविर चल रहा था तो हमारे पास आसपास में बैठे हुए लोग एक एक उत्तर देते थे, हाँ और वो लोग कौन सुनो, कि जो पंडित बोलकर बाहर में सिखाने जाते हैं और उनके एक एक जो वक्तव्य है कहो या उनके जो एक एक ओपिनियन है वो देख के तो हम फ्रीज हो जावे ऐसी बात। मैंने आपको पॉइंट आउट करके दिखाया ना कितनी बार हमारी भी वैसी हालत नहीं हुए कि अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त ये पता ही नहीं हुए तो यहाँ आके किया क्या, क्योंकि ये बात कितनी बार निकली अपने यहाँ बताइए, हर हमेशा निकलती है। कोई बात नहीं, भूलना ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बार बार बताने के बाद याद रखना इतना तो निरपराध बनो क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अहो आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है उसकी प्रतीति करो। इस प्रकार धर्म श्रवण के निमित्त से भी किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है। अब यहाँ क्या हो गया, धर्म श्रवण, ऊपर क्या हो गया वेदना, उसके ऊपर क्या हो गया पंच कल्याणक। तो ये सब क्या कह रहे हैं, ये सब बहिरंग निमित्त है और इनके जो जो इन जीवों को जो कुछ सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ वह अंतरंग निमित्त कौन है, जो नियम रूप निमित्त कहेंगे तो कर्मों का अनुदय। अनुदय इसके लिए कहना किसका उपशम होगा, किसका क्षय होगा, किसी का क्षयक्षम होगा। तो आपने लिए बहुत अच्छा शब्द है अनुदय, तो यू आर सेफ एंड साउंड। का कहा इस प्रकार धर्म श्रवण के निमित्त से भी किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है, जो सुनकर अंतर में ज्ञान ध्यान करके सम्यक दर्शन प्रकट करता है उसको ही धर्म श्रवण निमित्त कहा जाता है। सुनने वालों को सभी को सम्यक दर्शन होता ही है ऐसा नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले को भी श्रवण निमित्त है ऐसा है। ये श्रवण का अर्थ यहाँ देश ना लेना हो, पुण्य के फल में बाहर में स्वर्ग आदि के वैभव का ठाठ मिले, उसे देखकर किसी जीव के ऐसा विचार जागृत हो या हो पुण्य के फल में भी ऐसी वृद्धि मिली तो मेरे चैतन्य की वृद्धि की महिमा कैसी, जिसके एक विकल्प के फल में ऐसे वैभव का ठाठ मिले तो उस वस्तु स्वभाव की महिमा कैसी। इस प्रकार स्वभाव की महिमा से कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वह उसके देव रुद्धि दर्शन निमित्त कहा जाता है। यानी देवों की जो रुद्धि है यानी उनको जो कोई प्राप्ति होती हो वो उनके लिए निमित्त है। बहुत सुंदर, उपरोक्त सभी सम्यक दर्शन के क्या लिखा है ना, बाह्य कहो हम बहिरंग कारण कहो, जब जीव अंतर स्वभाव की रुचि करके उसके आश्रय का है। बंदा क्या चाहिए, मुझे लगा तुमने कुछ पूछा। देखो क्या कहते हैं, जब जीव अंतर स्वभाव की रुचि करके उसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट करे तब ऐसे बाह्य कारणों में भी उपचार से कारणपने का उपचार किया जाता है और इसी को व्यवहार वचन कहते हैं, व्यवहार नहीं कहते हैं। यानी देखो इतनी बात नक्की हो गई कि अंतर स्वभाव की रुचि करना यही एकमेव सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय है। यानी क्या, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसे पहले नक्की तो करो तो रुचि हो जाए। अंतर में अपने स्वभाव की रुचि करते ही मिथ्यात्व कर्म का उपशम होकर जीव को सम्यक दर्शन होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथम तो उपशम सम्यक दर्शन होता है और उसके मिथ्यात्वादि कर्म का उपशम होता है। क्षयक्षमिक सम्यक्त्व के दर्शन मोह संबंधी सात प्रकृतियों में से छह का तो उपशम या क्षय होता है और एक सम्यक्त्व मोहिनी प्रकृति का उदय होता है। यानी ये कृतकृत्य वेदक की बात करी, उसके उदय से सम्यक्त्व में किंचित अधिचार लगते हैं किंतु वह बंध का कारण नहीं होता। क्षायिक सम्यक्त्व भी तो सातों प्रकृतियों का सर्वथा क्षय होता है। इस प्रकार जीव के सम्यक दर्शन रूप परिणाम उपशम क्षयक्षम तथा क्षायिक ऐसे तीन भेद रूप होते हैं। इसको हमने एक शब्द कौन सा बताया, जय बिन, ये तीनों का उपशम के लिए, क्षयोपशम के लिए और क्षय अनुदय, यानी उदय नहीं होना। अब क्षायिक वाले का है नहीं तो क्या उदय होगा, यह सम्यक तो परिणाम अति सूक्ष्म है, वह यह सीधा तो केवल ज्ञान गम्य है। ये परिणाम जो है ना, ये परिणाम यानी क्या है, एक समय की पर्याय है, और वो पर्याय किसी जीव के मतलब छद्मस्थ जीव के ज्ञान का विषय नहीं। इसलिए क्या कहा, वह यह सीधा तो केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन उस जीव को जो अनुभूति हुई, जो आनंद हुआ, अतीन्द्रिय आनंद की जो अनुभूति है, वो समझ जाता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। वो ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान ही जाने हमको हुआ है कि नहीं, वो जाने भाई आपने को मालूम नहीं, यहाँ लिखा है ना केवल ज्ञान गम्य, वो तो कह रहे हैं सम्यक तो परिणाम अति सूक्ष्म है, यह तो सीधा केवल ज्ञान गम्य है।
सीधा का अर्थ क्या है?
हाँ
नहीं, सम्यक्त्व की जो पर्याय है वो केवल ही जानते हैं, सम्यक्त्व की पर्याय को स्वयं वो जीव भी नहीं जानता है, आनंद के द्वारा उसने जान लिया है, अन्य गुण के पर्याय के द्वारा जाना है, स्वानुभव के द्वारा जाना है, पहले इस पर बहुत चर्चा हुई थी अपनी। इसलिए सम्यक्त्व का परिणाम जो है उसको जानने वाले तो केवल ज्ञानी है।
अब आगे बताते हैं, कर्म प्रकृतियों के उद्गल स्कंद भी सूक्ष्म है तथा उनमें फल देने की सामर्थ्य रूप अनुभाग है, वह भी अति सूक्ष्म है। इसको अभी बताने की जरूरत है क्या? यह अनुभाग की बात तो हम रोजाना पढ़ रहे हैं, कितना सूक्ष्म है, अपने कुछ समझते ही नहीं है, केवल ज्ञान कम। और यहाँ जीव में होने वाले उपशमादि सम्यक्त्व भी अति सूक्ष्म है। इन सम्यक दर्शन के सूक्ष्म परिणाम को प्रत्यक्ष तो केवली भगवान जानते हैं, और छद्मस्थ जीव अपने स्व संवेदनादि द्वारा उनका निर्णय करते हैं। यहाँ क्लियर बात हो गई ना अभी? क्या कहा, सम्यक दर्शन के सूक्ष्म परिणामों को प्रत्यक्ष तो केवली भगवान जानते हैं, और छद्मस्थ जीव अपने स्व संवेदनादि द्वारा उनका निर्णय कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के स्व संवेदन यानी उसमें आप आनंद की अनुभूति भी ले सकते हैं, अभी जो मैं ऐसा ही हूँ और मैं सुख स्वरूप हूँ आदि जो वेदन होगा, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये स्व संवेदन और उसके साथ साथ आनंद की अनुभूति वगैरह जो उसके द्वारा निर्णय कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के कितने ही परिणाम छद्मस्थ के ज्ञान में ज्ञात होने योग्य होते हैं, और उनके द्वारा सम्यक्त्व का निर्णय हो जाता है। इस कारण वे परिणाम सम्यक दर्शन बाह्य चिन्ह है। सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह है ना, यहाँ क्या लिखना है, इस कारण वे परिणाम सम्यक दर्शन के लिख देना बाह्य चिन्ह है। समकीति जीव के सम्यक दर्शन के परिणाम ऐसे सूक्ष्म है कि छद्मस्थ उन्हें सीधे नहीं जान सकता, वे तो केवल ज्ञान गम्य है, किंतु उस सम्यक दर्शन के साथ समकीति जीव को ज्ञान की अनुभूति आदि परिणाम होते हैं, वे सम्यक्त्व को पहचानने के बाह्य चिन्ह है, उसके द्वारा सम्यक दर्शन का निर्णय होता है।
ये बाह्य चिन्ह क्यों कहा? अनात्मभूत, वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है, अन्य गुण की पर्याय के द्वारा सम्यक्त्व का निर्णय किया, इसलिए उसको बाह्य चिन्ह कहा। मैंने ज्ञान और आनंद की पर्याय के द्वारा सम्यक्त्व का निर्णय किया, डायरेक्ट सम्यक्त्व की पर्याय नहीं जाने, इसलिए उसको बाह्य चिन्ह कहा।
ज्ञान का परिणाम सम्यक दर्शन से जुदा है, अतः सम्यक दर्शन से वह बाह्य, इधर एक्सप्लेन कर दिया, देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान का परिणाम सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा की बात कर रहे हैं, उससे जुदा है, अतः सम्यक दर्शन से वह बाह्य है, किंतु वैसे ज्ञान परिणाम सम्यक दृष्टि को ही होते हैं, इस कारण वे ज्ञानादि परिणाम सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह है। समकीति जीव के कितने ही खास परिणाम छद्मस्थ के ज्ञान में आने योग्य है, और उन पर से सम्यक्त्व का निर्णय हो सकता है। देखो अभी तो यह सम्यक दर्शन के स्वरूप का वर्णन है, ऐसे सम्यक दर्शन बिना धर्म नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र दशा होती है और बाह्य अभ्यंतर अपरिग्रह पना होता है, ऐसे मुनि दशा में साक्षात धर्म है। ये अपरिग्रह पना, इसमें बाह्य और अंतर, ये जो बात बताई है, तो ये बाह्य अपरिग्रहपना कौन सा है, ऐसा मेरा प्रश्न है। क्या कहा, देखो देखो देखो, यहाँ कहते सेकंड लाइन दूसरा पैराग्राफ, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र दशा होती है और उस समय क्या होता है, बाह्य और अंतर अपरिग्रहपना होता है, तो ये बाह्य अपरिग्रहपना होता है, इसका अर्थ क्या है, वीरेश भाई आप बता पाएंगे, कोई बात, हाँ बोलो, हाँ जी, हाँ वो क्या है, अंतरंग परिग्रह अपरिग्रह, मैंने प्रश्न क्या पूछा, बाह्य अपरिग्रह पना जो है वो क्या है, इसका अर्थ क्या लेना हमें, हाँ हमने केवल बाह्य की बात करी है, हमने अंतरंग को हाथ ही नहीं लगाया अभी तक, आप डर रही है, आप सही उत्तर देती थी भाग रही है दूर, हाँ प्रेरणा में नाम बताना चाहती, वो परिग्रह हाँ, तो बाह्य अपरिग्रह पना जो बताया उसमें क्या लेना चाहिए, ऐसा मेरा प्रश्न है। नग्न दशा, सोचेंगे ना, हम सबका उत्तर आने दो, हमारे लक्ष्मी बहन बताएंगे अभी, बहुत अच्छा, देखो 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 ये, हाँ एग्जैक्टली, हाँ देखो हमने क्या देखा, परिग्रह के भेद देखे कितने हैं, अंतरंग और बाह्य, तो उसमें बाह्य परिग्रह में 10 देखे थे, अंतरंग में 14 देखे थे, इनसे रहित पना वो मुनिपना है। देखो देखो फिर से देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ फिर से, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र दशा होती है और बाह्य अंतर अपरिग्रह पना होता है, ऐसी मुनि दशा में साक्षात धर्म है। ये मुनि दशा कैसी है, निर्ग्रंथ स्वरूप है, ये निर्ग्रंथता क्या है कि 24 परिग्रह से रहित पना है, वही अपरिग्रह पना है। थोड़ी हिंदी में समझ आवे नहीं आवे कोई बात नहीं, हम तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, यही बराबर है ना, हाँ अपरिग्रह पना है, ऐसी अपरिग्रहवंत मुनि दशा है, उसके बदले परिग्रह सहित मुनि दशा मनवावे, ऐसे जीव को तो अपरिग्रह पने की दृष्टि भी नहीं रहती, अर्थात उसकी श्रद्धा भी सच्ची नहीं है। तो जिसकी श्रद्धा सच्ची नहीं है तो सम्यक दृष्टि होंगे कि नहीं, ये ऐसे टॉपिक के समय हमारी सुशीला बहन नहीं रहती, अभी अभी तो ये जितना ये बता रहे हैं ना, तो अंतरंग में उसका अधिक भाव भाषण होता है। जिस समय मैं उनको समझाया था उस समय ये बात भेजे में नहीं थी। स्वामी जी एक एक बात ऐसे खोल के देते हैं। ये कहते हैं कि परिग्रह सहित मुनि दशा मनोभाव ऐसे जीव को तो ओ परिग्रह पना क्या होता है इसका भी ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं है। देखो अभी इसका क्या अर्थ है कि जिसके सच्चे देवगुरु शास्त्र की सही श्रद्धा है वही तो जीव काबिले सम्यक दर्शन है ना। यानी दोनों भले एक साथ होवे तो हम तो कहेंगे ना, जब तक देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा सही नहीं होती है तो वह जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा। होता तो दोनों एक साथ। देखो देखो अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। जीव को सम्यक दर्शन हो वहाँ उसे स्वानुभूति होती है, उसके सम्यक दर्शन का निर्णय परीक्षा द्वारा हो सकता है, ज्ञानादि के परिणाम द्वारा सम्यक दर्शन के निर्णय करने का व्यवहार है। यदि इस प्रकार परिणाम द्वारा सम्यक दर्शन का निर्णय न हो सके तो छद्मस्थ जीव को सम्यक दर्शन का निर्णय होना ही संभव नहीं है। यह जीव समकीति है या मिथ्या दृष्टि इसका निर्णय न हो सके तो किसको वंदन करना और किसको नहीं यह भी निश्चित नहीं हो सकता। तथा आस्तिक का भी अभाव होता है, अपने अथवा पर के सम्यक्त्व का निर्णय न हो तो आस्तिक अथवा निशंकता नहीं रह सकती और व्यवहार का भी लोप हो जाता है। ये हमने देखा ना, सम्यक दृष्टि को आस्तिक संवेग निर्वेद आदि जो भाव होते हैं उसमें से कह रहे हैं कि अगर हम सम्यक्त्व का निर्णय न करें तो ये सारे परिणाम भी, यानी वो जो व्यवहार है वो व्यवहार ही नहीं रहेगा, उसका लोप हो जाएगा। अतः आगम से, अनुमान से और स्वानुभव से परीक्षा करके सम्यक दर्शन का निर्णय करना। ऐसे कहीं चलता है कि आपने इतने फला अभ्यास किया तो आपको सम्यक दर्शन हो गया, चलो आगे नेक्स्ट बैच। हाँ ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं ऐसा चलता है ना, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। आप हाँ भी नहीं बोलते हो ना भी नहीं बोलती है। क्या करें अभी इस। हाँ साहब। हाँ उसके सम्यक दर्शन का निर्णय हो सकता है, वो कैसा? परीक्षा द्वारा। नहीं 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 स्वयं की। आप क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक बताना चाहते हैं या आपका प्रश्न है? हाँ मैं बताता हूँ। देखो ये जब जीव को पहले में पहले सम्यक दर्शन हुआ उस समय स्वानुभूति हुई कि नहीं, बराबर। अब कहते हैं ये स्वानुभूति हुई है, उसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ है, हाँ? वह कहते हैं उसके सम्यक दर्शन का निर्णय ये कैसा होगा? तो परीक्षा द्वारा। ये परीक्षा कौन सी है? कि ये जो अनुभव हुआ अतीन्द्रिय आनंद का वो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। उसके यानि जिसके, देखो 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 एक मिनट, आपका कहना है कि ये पर को सम्यक दर्शन हुआ के नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो जीव को सम्यक दर्शन हुआ हो वहाँ उसे स्वानुभूति होती है, वो उसके यानी जीव के सम्यक दर्शन का निर्णय परीक्षा द्वारा हो सकता है। आप उसको उसके की जगह आप उसको पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी जगह उसके पढ़ो, यानी उसी जीव को सम्यक दर्शन का निर्णय कैसा होगा। तो अभी जैसा आपने बताया ज्ञानादि, ज्ञानादि में क्या लेना, तो ये ज्ञान में क्या आएगा कि मुझे जो आनंद हुआ वो ज्ञान ही जानेगा ना, तो ज्ञान साथ में लेना। अभी आगे जो बताया ना इसी पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस, आगम से, अनुमान से और स्वानुभव से, ये बात कहाँ आई थी याद है? हाँ प्रेरणा बेन बताएगी, उनको याद है नहीं मालूम है? हाँ 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 मैं निज वैभव बताऊंगा, आप भी अनुभव करके नक्की करना।
युक्ति से, आगम से, गुरु की परंपरा से,
हाँ।
और स्वान हाँ तो आप स्वानुभव से निर्णय करना, उसकी प्रतीति करना, परीक्षा करना।
सजेस्ट करते हैं, मैं कहता हूँ इसलिए मानो मती, हम जो कह रहे हैं वो बात, वो जो निज वैभव यानी स्वरूप का जो मैं अपने स्वभाव का मैं वर्णन करूंगा, वो तो युक्ति से, गुरु की परंपरा से, और कौन सी बात रहेगी, आगम से और स्वानुभव से, चार बातें बताई। हाँ तो आप भी उसी को स्वानुभव से, वही बात यहाँ पर स्वामी जी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अतः आगम से, अनुमान से और अनुभव से परीक्षा करके सम्यक दर्शन अपने को हुआ है कि नहीं इसका नक्की करना। यहाँ तो दूसरे की पंचायत छोड़ो ऐसा बोलते हैं, फिर भी बीच में हम कर जाते हैं कि नहीं, ऐसी स्कूल खुली है करके। हाँ जी
ये बात पहले आ चुके, पेज नंबर 16 निकाल, जो हम पढ़ चुके उसी के बारे में आपको प्रश्न हो रहा है दोबारा।
16 नंबर का पेज,
16 नंबर प्रश्न, चौथी लाइन, उसकी परीक्षा, मैंने पहले में पहले बताया था पहले पृष्ठ पर कि सम्यक की परीक्षा करना, उसके चिन्ह कौन से है वो बता रहे हैं, निकालो 15 पेज। मुख्य चिन्ह तो उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, मिला 15वें पृष्ठ पर सम्यक दर्शन का मुख्य चिन्ह बता रहे हैं।
निचला
नीचे का पैराग्राफ, नीचे का लास्ट पैराग्राफ,
वे चिन्ह कौन से हैं सो लिखते हैं। हाँ
मुख्य चिन्ह तो उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, यद्यपि यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है, विशेषण पर्याय है, तथापि वह सम्यक्त्व होने पर होती है, इसलिए उसे बाह्य चिन्ह कहते हैं। अभी उसकी उसका वर्णन करेंगे आगे, फिर आगे के पृष्ठ पर आना, चौथी लाइन, ये घर जाके दोबारा पढ़ना पूरा। उसकी परीक्षा सर्वज्ञ के आगम, अनुमान तथा स्वानुभव भाव ने, स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा, इन प्रमाणों से की जाती, सबको प्रमाण में लिया, आगम भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है और स्वानुभव भी प्रमाण है, इसी को निश्चय तत्वा श्रद्धान भी कहते हैं। वहां अपनी परीक्षा तो अपने स्व संवेदन की प्रधानता से होती है, अपने को सम्यक तो हुआ है, अपनी परीक्षा कैसे करेंगे कि उसको स्व संवेदन रूप आत्मानुभूति हो गई, और पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग में होने की परीक्षा, पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग में होने की परीक्षा ऊपर के वचन काय की क्रिया की परीक्षा से होती है, ये वचन में कैसा उपदेश आ रहा है, उपदेश में कोई झूठा उपदेश हो रहा है क्या, काय की क्रिया ने कुदेव आदि की वंदना आदि चल रही है क्या नहीं है, ये काय की परीक्षा है। यह व्यवहार है परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं। अब आते अपने और बाद में वो प्रशम संवेग अनुकंपा उसको भी बताएंगे। ये मूल भावार्थ में लिखा है जयचंद जी ने और उसको फिर दोबारा स्वामी जी खोल रहे हैं। तो उसमें उसके जो चिन्ह आदि में लिया ना, प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य, उसका भी वर्णन होगा। उसी 16 परिश के अंतिम लाइन पर है वो, और उसको भी फिर विस्तार से समझाए, भी भावार्थ में भी समझाया था विस्तार से 17वें पृष्ठ पर। ये पूरा ही दोबारा पढ़ेंगे ना तो थोड़ा और जो बार बार प्रश्न उठते हैं उसका समाधान मिल जाएगा। अब हम यहाँ उसी भावार्थ का यहाँ प्रवचन पढ़ रहे हैं। बात तो वही की वही है जो मूल में पंडित जी ने बताई है जयचंद जी ने।
यहाँ पर जो लिखा है ना, पर के अंतरंग में होने की परीक्षा पर के वचन काय की क्रिया की परीक्षा से होती है, ये तो यहाँ उन्होंने सही बताया है। लेकिन हमें एक ऐसे व्यक्ति मिली थी राधर, वो कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि हो उसी को क्या बोलते हैं, वक्ता बनना चाहिए। ख्याल में, जो सम्यक दृष्टि स्वयं नहीं हो उसको प्रवचन नहीं देने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और मैं तो उड़ते पंछी की क्या बोलते, उड़ते पंछी के पर से जैसी परीक्षा की जाती है वैसे कोई चलते आता है तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं मैं समझ सकता हूँ, ऐसा बोले हमको। अरे वो क्या करना है तेरे को? क्या कहना है उनका, जो चलते आया ना तो मैं डायग्नोस कर सकता हूँ कि वो स्वयं को सम्यक, उसको सम्यक तो हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये पढ़ा था ना उन्होंने काय की क्रिया वचन की क्रिया। अरे काय की क्रिया में भी कोई सिर्फ चलते आना ऐसा थोड़ी होता है। चलो जो भी होगा, हाँ हम कहाँ आए थे। अब सम्यक्त्व का निर्णय किस चिन्ह से होता है यह कहते हैं। सम्यक दर्शन का मुख्य चिन्ह तो उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा की जो अनुभूति है वही है। यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है, ज्ञान का परिणाम है, सम्यक दर्शन परिणाम तो उससे भिन्न है। ये क्या कहना चाहते हैं मिली भाई, समझ में आई बात? कह रहे हैं यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है, ज्ञान का परिणाम है, और सम्यक दर्शन का परिणाम तो उससे भिन्न है। हाँ बहुत अच्छा, एक ज्ञान गुण का परिणमन बताया और एक श्रद्धा गुण का परिणमन बताया। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन का मुख्य चिन्ह कौन सा है कि शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा की जो अनुभूति, वह अनुभूति भी ज्ञान की पर्याय भाई। हाँ, यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है, वो ज्ञान की पर्याय है, परिणति है, आगे भी लिखा है ज्ञान का परिणाम है। अब कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन का परिणाम तो उससे जुदा है, किंतु सम्यक दर्शन के साथ ही ऐसी अनुभूति होती है। जिसके श्रद्धा सही नहीं है तो वह ज्ञान की अनुभूति वैसी नहीं होगी। अतः वह अनुभूति सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है, यानी वह जो ज्ञान का परिणमन है वह सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है। उस अनुभूति को बाह्य चिन्ह क्यों कहा? वह है तो जीव का अंतरंग परिणाम, किंतु सम्यक दर्शन परिणाम से वह अन्य है। एक गुण की अपेक्षा से दूसरे गुण के परिणाम को बाह्य कहा है। क्या समझ में आया? ये उत्तर है उसका। सम्यक दर्शन होते ही ऐसी शुद्ध ज्ञान की अनुभूति होती है। सम्यक दर्शन बिना ऐसी अनुभूति होती ही नहीं। अतः उस अनुभूति को यानी ज्ञान के परिणति को सम्यक्त्व का चिन्ह कहा है। स्वयं को अनुभूति से स्वयं के सम्यक दर्शन का निशंक निर्णय होता है। भाई अपनी बात चल रही ना, यानी किसी जीव के खुद की बात चल रही। स्वयं को स्वानुभूति से स्वयं के सम्यक दर्शन का निशंक निर्णय होता है। राग से रहित और शुद्ध चेतना के अनुभव सहित ऐसी जो ज्ञान दशा हुई वह सम्यक दर्शन का चिन्ह है। यहाँ देखो ये ज्ञान का जो परिणाम है उसको बाह्य चिन्ह कह दिया। अभी हमने उसको एक शब्द देखा था, अनात्म भूत लक्षण। क्या कहते हैं, देखो राग से रहित और शुद्ध चेतना के अनुभव सहित ऐसी जो ज्ञान दशा हुई वह सम्यक दर्शन का चिन्ह है। और ऐसी अनुभूति से जीव के सम्यक्त्व का निर्णय होता है। सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के आश्रय वाली और राग रहित स्वानुभूति प्रकटती है। यानी वो आत्मा का आश्रय करेगा और वो कैसा होगा, राग से रहित। सम्यक दर्शन ध्यान पूर्वक अंतर में लीन होकर तीन कषाय का नाश करके बाह्य अभ्यंतर निष्परिग्रह दशा हुई वहाँ ऐसी दशा होती है कि मानो चलते फिरते भगवान। ऐसी तो मुनि दशा है। अभी हम पूजा में भी बोलते हैं ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों में नित यही भावना भाते हैं। ये देखो भाई, ऐसे मुनिराज जिनके दर्शन से ही ऐसा लगता है। आप सोचो तो सही, ऐसा कहने में आता है कि कुंदकुंद आचार्य उनके उम्र के 8वें साल में मुनि दशा उन्होंने धारण की। 12वें साल में तो वो आचार्य हुए थे, मुनि दशा उन्होंने पहली ली थी। तो मैं ये कहता हूँ वो जब चलते होंगे तो कैसा भाषित होता है देख लेना, हमें बताना। मेरा भी नॉलेज उसमें नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक ख्याल है वो 8वें साल में हुए थे, 12वें साल में आचार्य हुए थे। फिर भी आपको कहीं लिखित रूप से मिला तो मुझे बताना कि 11वें में उन्होंने दीक्षा ली है, जो भी होगा देखना। शायद कुंदकुंद के किसी पुस्तक में लिखा होगा, इसी में होना चाहिए आगे है, देख तो होगा। अच्छा, तो मुझे ये कहना है कि वो इतना छोटा बालक मुनि दशा की अवस्था में कैसा लगे है? यहाँ तो कह रहे कि वो इतने अंतरंग में और बाह्य में निष्परिग्रही होते हैं कि मानो जैसे सिद्ध जीव ही चलते फिरते रहे अपने कर्म भूमि में। तो कह रहे हैं ऐसी तो मुनि दशा है, चौथी लाइन। ऐसी मुनि दशा होने के पूर्व सम्यक दर्शन होता है उसका यह वर्णन चलता है। उस सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान के मिला, क्या लिखा है पेज नंबर बताओ। शुरू में उपोद्घात के बाद युग प्रधान आचार्य कुंदकुंद एक संक्षिप्त परिचय और उसके आगे का एक पृष्ठ छोड़कर मंगल मूर्ति लिखी है। हाँ, हाँ थर्ड लाइन सेकंड लाइन में लिखते हैं, उन्होंने मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में ही दिगंबर जैन श्रमण की दीक्षा का अत्यंत कठिन व्रत अंगीकार किया था और 95 वर्ष की आयु पर्यंत उनका अखंड एवं निर्दोष पालन किया था। अब यहाँ तो उन्होंने 12 वर्ष बताया है, अब हमने तो ऐसा माना था कि वो 8वें वर्ष में हुए थे। चलो ठीक है, यहाँ लिखा है वही प्रमाण। हाँ जी, हाँ कहाँ लिखा है? और एक पेज आगे। वाह वाह वाह, इन्हें 44 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। चलो बहुत अच्छा, यानी हम ही गलत रहे, यानी 11 नहीं 8 नहीं 12 हो गया और 32 वर्ष के बाद आचार्य पद की प्राप्ति हुई। चलो हाँ ना दिया ना, बताए ना उन्होंने। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ जो चौथी पांचवी लाइन के बाद जो स्वसंवेदन शब्द निकलता है ना छठे लाइन में, स्वसंवेदन में जो अतीन्द्रिय आनंद आता है वह जुदी पर्याय है और उस आनंद को जानने वाली पर्याय जुदी है, ये ज्ञानादि में ये बात आ गई। समकीति जीव को ऐसा, समकीति जीव को ज्ञान में ऐसा स्वसंवेदन होता है कि जो यह शुद्ध ज्ञान है वह मैं हूँ और ज्ञान में जो रागादि विकार है वह कर्म के निमित्त से उपजता है, अर्थात वह स्वभाव रूप नहीं है। इस प्रकार रागादि रहित शुद्ध ज्ञान मात्र भाव का स्वयं को अनुभव होता है, यह सम्यक दर्शन का चिन्ह है। देखो यह ज्ञानी की अनुभूति, शुद्ध ज्ञान चेतना ही मेरा स्वरूप है, रागादि की वृत्तियां वह मैं नहीं, वे मेरा स्वरूप नहीं। इस प्रकार ज्ञान और राग के भेद ज्ञान द्वारा जो ज्ञान भाव का आस्वादन होता है वह ज्ञान की अनुभूति है। यानी यह मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव अनुभूति होना वह भी ज्ञान की पर्याय ना। अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, ऐसी ज्ञान की अनुभूति वह आत्मा की अनुभूति है और वही शुद्धने का विषय है। अनुभूति स्वयं तो पर्याय है किंतु वह पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो गई है, इस कारण शुद्धने के अभेद विषय में वह समा गई है। देखो बहुत बार पूछा जाता है ना कि वो जो सम्यक दर्शन हो रहा है वो पर्याय उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, यानी किसी विशिष्ट पर्याय की बात करके पूछ रहे, तो यहाँ उसी को भी हाँ पड़ा है। क्या लिखते हैं देखो, अनुभूति स्वयं तो पर्याय है किंतु वह पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो गई है। अभेद हो गई यानी क्या, जैसा द्रव्य का स्वभाव है वैसे पर्याय में ज्ञात हो गया तो अभेद हो गई कह रहे, इस कारण शुद्धने के अभेद विषय में जो त्रिकाली स्वभाव है उसमें वह समा गई है। अनुभूति रूप जो निर्मल पर्याय हुई वह द्रव्य के साथ अभेद है। सम्यक दर्शन होने पर आत्मा की ऐसी अनुभूति होती है, उस अनुभूति से शुद्धनय द्वारा ऐसा ही श्रद्धान होता है कि सर्व विकारी भावों से रहित केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय में मेरा स्वरूप है, अन्य सभी संयोग जनित भाव मेरा स्वरूप नहीं है। वर्तमान स्वानुभूति में राग से आंशिक भिन्न हुआ तो राग से सर्वथा भिन्न पड़ने पर ज्ञान का पूर्ण विकास होकर केवल ज्ञानादि चतुष्टय प्रकट हो, ऐसा मेरा स्वभाव है। यानी जब उसको सम्यक तो हुआ तो उस समय वो जानता है कि मैं अभी राग से भिन्न हो गया हूँ। तो कहते हैं सर्वथा भिन्न हो जाऊं तो मुझे केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा मेरा स्वरूप है, स्वभाव है। इस प्रकार साथ ही साथ सर्वज्ञ पद की प्रतीति भी समकीति जीव को हो सकती है। समकीति को शुद्ध होने से जो ऐसी आत्मा की अनुभूति होती है वह सम्यक दर्शन का मुख्य चिन्ह है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान या व्रत तप आदि कुछ भी सम्यक नहीं होते। व्रत तप होते नहीं ऐसी बात नहीं है, उसको सम्यक नहीं कहेंगे। इस सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन के बिना धर्म का अंश भी नहीं होता। समकीति तो अखंड स्वभाव की प्रतीति में आ गया है और वर्तमान में राग से भिन्न पड़कर निज के ज्ञान दर्शन आनंद आदि आंशिक रूप से प्रकट हुए हैं, तो राग का सर्वथा अभाव होकर पूर्ण केवल ज्ञान दर्शन पूर्ण आनंद आदि अनंत चतुष्टय प्रकटने की सामर्थ्य है, ऐसा भी प्रतीति में आ जाता है। समकीति को ऐसे स्वसंवेदन रूप जो अनुभूति है वह सम्यक दर्शन का चिन्ह है और वह चिन्ह को ही सम्यक दर्शन कहना व्यवहार है। यानी ज्ञान की पर्याय को सम्यक दर्शन कहना वह व्यवहार है। सम्यक दर्शन के साथ की अनुभूति सम्यक दर्शन का चिन्ह है और उस चिन्ह को ही सम्यक दर्शन कहना व्यवहार है। देखो यह सम्यक दर्शन का व्यवहार ऐसे चिन्ह से सम्यक दर्शन का निर्णय करके उसका व्यवहार होता है, तथा सम्यक्त्व के ऐसे चिन्ह की परीक्षा आगम प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से तथा स्वानुभव रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है। यहाँ स्वानुभव रूप प्रत्यक्ष प्रमाण कहा ना, यानी वो अपना ही स्वयं का ही परिणमन होगा और अपने को ही जानेगा वो। तथा सम्यक दर्शन को ही निश्चय तत्वार्थ सिद्धांत भी कहा जाता है। तत्वार सूत्र में तत्वार्थ सिद्धांत को ही सम्यक दर्शन कहा है, वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। ऐसे सम्यक दर्शन का निर्णय उसके चिन्ह द्वारा करना चाहिए। यथार्थ जैन दर्शन क्या है उसकी बात चल रही है। अंतर बाह्य में परिग्रह रहित दशा हुई, ऐसी मुनि दशा है, यही जैन दर्शन है। इससे विपरीत हो वह दर्शन मार्ग नहीं है, यानी जैन मार्ग नहीं है। मुनिराज को अंतर में राग द्वेष मोह नहीं है, तीन कषाय चोकड़ी का नाश हुआ है और वे उग्रपने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसी अंतरंग दशा पूर्वक बाह्य में भी सहज यथा जात रूप दशा। ये यथा जात यानी क्या? नहीं 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 सुनो, जैसे जन्मता हुआ बालक होता है, यथा जात यानी जैसे जन्म जात जन्मा वो ऐसा स्वरूप। क्या कहा? ऐसी अंतरंग दशा पूर्वक। कैसी अंतरंग दशा? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव चल रहा है, ऐसी अंतरंग दशा पूर्वक बाह्य में भी सहज नग्न दशा दिगंबर दशा हो गई है, ऐसा दर्शन का मार्ग है। अभी उनको पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद नहीं प्रकटा है, बहुत आनंद प्रकटा है और पूर्णानंद के लिए प्रयत्नशील है, यानी उनको अनंत आनंद की अभी प्राप्ति नहीं हुई है। यह जैन दर्शन है, वे सर्वज्ञ पद के तात्कालिक साधक हैं, उनके ऊपर वितरागी जैन दर्शन की छाप है यानी मोहर है। ऐसे मुनिवरों को अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, उसमें से अभी सम्यक दर्शन के स्वरूप का वर्णन चलता है। बाकी की बात हम कल करेंगे। जावा